This is an ABP Life podcast.
निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये मिसरा है मिर्जा गालिब की नज्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी का। थोड़ा सा इसका आपको मतलब बता देती हूँ, फिर वहां से शुरू करते हैं। तो जब मिर्जा साहब बोल रहे हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, इसका मतलब है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को यानी कि एडम को जन्नत से हेवन से ऊपर से फेंका गया था, आप सबको ये कहानी तो पता होगी कि किस तरीके से आदम और हव्वा, एडम एंड ईव, मनु और शत्रुपा, इनको ऊपर से फेंका गया था। ये उनकी सजा थी कि वो दुनिया में रहें। तो वहीं से गालिब साहब अपना ये मिसरा डिराइव कर रहे हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन कि कितनी बेइज्जती के साथ आदम को नीचे फेंका गया था। फिर आगे वो कहते हैं कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो अपने यार को कह रहे हैं या सामने वाले को कह रहे हैं कि सुनते आए थे कि आदम को बड़ी बेआबरू करके फेंका गया था लेकिन आज हम तुम्हारे घर से कूचे से बहुत बेआबरू होकर के निकले हैं। तो जी, मैंने ये इसलिए कोट किया क्योंकि शायद गालिब साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि किस कदर फिट बैठेगा ये मिसरा जब राहुल गांधी 10 घंटे की ईडी की पूछताछ के बाद बाहर निकले होंगे। वैसे तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा मगर फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को जून के शुरुआती हफ्ते में पेश होने के लिए समन जारी किया था। इस मामले में सोमवार को राहुल गांधी तुगलक लेन स्थित अपने आवास से हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे भी थे। उनसे इस मामले में पूरे 10 घंटे तक पूछताछ भी की गई और फिर उन्हें आज यानी कि मंगलवार को दोबारा बुलाया गया जहां पर अभी तक पूछताछ जारी है। सुबह 11 बजे से राहुल गांधी जो निकले ईडी के ऑफिस के लिए अभी तक बाहर नहीं आ पाए। मगर ये कैसा मामला है जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी के आला कमान को इस कदर तकलीफ हो रही है, इस कदर सताया जा रहा है या फिर इस तरह 10 घंटे से ऊपर ईडी के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, ये सब तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो जी, आज FII में बस इसी मामले को, इसी मसले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो जी, क्या है नेशनल हेराल्ड? बताती हूँ, नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है जिसे साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL नाम की कंपनी के पास था। बराबर, शुरुआत से इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहे, यानी कि जितना भी पूरा ऊपर की क्रीम है, क्रीम डेला क्रीम, वो पूरी आपकी कांग्रेस की रही, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कांग्रेस के हाथ में था। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस ने AJL को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, समझ रहे हैं। फिर सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन नाम से एक नई कंपनी बनाई। तो आप ये समझिए कि पहले एक पेपर था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, उसे बंद करना पड़ा क्योंकि घाटा हो रहा था। पेपर का जो जितना भी चलाने वाला जो इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा था वो AJL के हाथों में था। अब कांग्रेस ने AJL को पार्टी फंड से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। फिर सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई। आगे बढ़ते हैं, यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38-38% की हिस्सेदारी है, यानी कि 76% की। वहीं जो बाकी का शेयर बचा है यानी कि जो 24% शेयर बचा है वो मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। आपको बताती चलूं, इन दोनों का निधन हो चुका है। ठीक है, तो फिर ईडी की जांच क्यों शुरू हुई, इस पर बात करते हैं। तो जी, जिस नेशनल हेराल्ड केस की वजह से राहुल गांधी का ईडी के सवालों से सामना हुआ उसकी शुरुआत 10 साल पहले 2012 में हुई थी जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एक केस दर्ज कराया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर के बनाई थी, उन्होंने 90.25 करोड़ यानी कि 90 करोड़ 25 लाख रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था। तो आप समझ रहे हैं, इन दोनों के अलावा चार और चेहरे इस केस में आरोपी बनाए गए थे। कांग्रेस के दो सीनियर नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा। इनमें से दो आरोपियों यानी कि मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो स्वामी की ओर से दाखिल किए गए इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड का गलत तरीके से अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन किया गया और कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति हथिया ली। दो साल बाद जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसके बाद अगस्त में ईडी ने मामले का संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सोनिया और राहुल गांधी ने साल 2015 में अलग अलग 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि अदा करने के बाद दिल्ली के पटियाला कोर्ट से जमानत हासिल की थी। इसके अगले साल यानी कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी यानी कि इंडिविजुअल पेशी से छूट दे दी, लेकिन कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। तो अब सवाल ये है कि सोनिया और राहुल गांधी से आखिर क्या जानना चाह रही है ईडी। तो ये ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून और राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है। ईडी सोनिया, राहुल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर वित्तीय लेनदेन जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो यंग इंडियन के प्रवर्तकों और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की भूमिका के बारे में पता लगाना चाहती है। ईडी ने जांच के तहत हाल ही में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। ये मामला कांग्रेस समर्थित यानी कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड यंग इंडियन में कथित वित्तीय अनियमितता यानी कि जो जब पैसों की लेन देन होती है तो उसमें जो अनियमितताएं आती हैं यानी कि जो ऊंच नीच आती है उनकी जांच के सिलसिले में हाल में दर्ज किया गया था। एक निचली अदालत की ओर से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच का संज्ञान लेने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। तो अब कांग्रेस के नेता इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। हजारों हजारों के ग्रुप्स में ये लोग जा रहे हैं, पिट रहे हैं, वहाँ पे बैरिकेडिंग है, घुसे जा रहे हैं और कई चीजें इस समय हो रही हैं जो शायद आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज पर देख रहे होंगे। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, ये कहा भूपेश बघेल साहब ने। तो कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के पैदल मार्च को रोके जाने के बाद कई बड़े नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी और वो सड़कों पर भी आए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी सड़क पर बैठे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शांति से पैदल मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो, हमें रोका गया। उन्होंने कहा कि पैदल मार्च करने में क्या परेशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को तक पीटा जा रहा है। कांग्रेस ने नेताओं कार्यकर्ताओं के पैदल मार्च को पुलिस ने रोका है। साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अशोक गहलोत साहब का कहना है कि देश में स्थिति बहुत गंभीर है। राजस्थान के सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, दिल्ली पुलिस पर सरकार के दबाव की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम धारा 154 से निपट सकते हैं, लेकिन आप हमें AICC कार्यालय में आने से नहीं रोक सकते। देश में स्थिति बहुत गंभीर है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ रिएक्शंस जो कांग्रेस नेताओं ने दिए। अब देखना ये होगा कि आज की ये सवाल जवाब वाली कार्यवाही कब तक चलती है। देखना ये भी होगा कि जैसे ही सोनिया गांधी सही होती हैं, क्योंकि उन्हें कोविड है, उन पर क्या कार्यवाही होती है, वो कितनी देर तक ईडी के सवाल जवाब झेलेंगी। ये सब मैं आपको बताती रहूंगी अपने खबर दिन भर के सेगमेंट में। फिलहाल ये था FII। आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश। मैं हूँ साहिबा खान और पॉडकास्ट की साउंड डिजाइनिंग की है ललित ने। नमस्कार।
फिजिकल डिस्टेंसिंग के टाइम पे न्यूज डिस्टेंसिंग मत करो, डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।